बांझ औरतों के बच्चे नहीं हुआ करते। मम्मी और आपने तो जाने कितनी ही बार अहाना को इस बेहुदे शब्द से नवाजा है, हर बार जानकर उनके जख्मों को कुरेदा है, उन्हें उनकी कमी का एहसास करवाया है, अपने तीखे जहरीले शब्दों से उन्हें असहनीय दर्द दिया है। आपने तो उन्हें मनहूस तक कह दिया था ना, और मुझे उन्हें छोड़कर दूसरी शादी करने के लिए भी फोर्स कर रही थी। पर देखिए क्या हो गया, जिस लड़की को आप बांझ कहकर धुतकारती रहीं, आज वही लड़की आपके बेटे के अंश को खुद में धारण किए आपके सामने खड़ी है। जिस लड़की को आप मनहूस कहकर कोसती रहीं, आज उसकी वजह से आपके बेटे की जिंदगी में उसकी खोई खुशियां लौट आई हैं। अब आप उन्हें क्या कहेंगी मम्मी? अक्षय का स्वर एक बार भी ऊंचा नहीं हुआ था, आवाज संयमित थी और लहजा शांत व गंभीर था। उसके चंद शब्दों ने रूपाली जी की जैसे जुबान खींच ली थी। शादी के बाद से जिस मुंह से जहर उगलती आई थी, आज उसे अक्षय ने बंद होने पर मजबूर कर दिया था। बहुत ही शांति से उसने अब तक अहाना को कहे सभी अपशब्दों का जवाब दे दिया था, उन्हें और उनकी बोलती बंद कर दी थी। अपना इतना सा मुंह लेकर शर्मिंदगी से सर छुपाते हुए वे वहां से चली गई थीं। अक्षय ने अपनी आंखें मूंद ली। उसके मन के भावों को इस वक्त कोई नहीं समझ सकता था। आज तक जब जब रूपाली जी ने अहाना को ऐसे किसी शब्द से नवाजा था, उसका दिल तड़पा था। जवाब उसने हर बार दिया था, पर वे कभी बाज नहीं आती थीं। पर आज मौका था अहाना के हर दर्द हर अपमान का बदला लेने का, उसे उन शब्दों से छुटकारा दिलाकर रूपाली जी का मुंह बंद करवाने का। कुछ पल लगे उसे खुद को संभालने में। एक बार फिर लबों पर मुस्कान सजाए हुए वो बाकी सब की ओर पलटा तो सबको अपनी ओर देखता पाया। अंतरा तो आज खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आखिर उस खड़ूस शशिकला को उसके अपने बेटे ने आज मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। अन्वय, फलक, अभिजीत जी सबके लबों पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैली थी। अहाना की फैमिली का दिल सुकून महसूस कर रहा था। चाहे सास कैसी भी हो, पर अनु के लिए जीवन साथी चुनने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अक्षय की निगाहें उन सब की भीड़ में अहाना के चेहरे पर जाकर ठहरी, जो आंखों में नमी लिए उसे एकटक देख रही थी। अक्षय ने इशारे में उसे रोने से मना किया और मुस्कुराने का इशारा किया, फिर उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, अनु अब कुछ देर आराम कर लीजिए, बैठे बैठे थक गई होंगी। अहाना कुछ भी नहीं कहा। अक्षय उसे सहारा देते हुए कमरे में ले आया और जैसे ही उसे बेड पर बिठाने के बाद उससे दूर हटने लगा, अहाना ने उसकी हथेली को थाम लिया। क्या हुआ? अक्षय ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, पर अहाना के लब नहीं मुस्कुरा सके। आपने मम्मी जी को वो सब क्यों सुनाया? उन्हें बुरा लगा होगा, और आप भी उनसे इस लहजे में बात करके दुखी हैं, बस दिखा नहीं रहे। अहाना का सवाल सुनकर अक्षय इसके सामने बैठ गया और उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों में थामते हुए संजीदगी से जवाब दिया, जरूरी था अनु, ताकि वो दोबारा कभी आपके लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। उन्हें तकलीफ हुई होगी, पर उतनी नहीं जितनी उन शब्दों के जरिए उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई होगी। और जाहिर सी बात है कि अपनी मम्मी से इस तरह से बात करना मुझे अच्छा कभी नहीं लग सकता, पर मुझे ऐसा करने पर मजबूर भी वही करती हैं। तकलीफ मुझे तब भी होती है जब मम्मी आपको दुख पहुंचाती हैं। वो माँ है मेरी, इसीलिए अब तक उनकी बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज करता आया हूँ, पर उन्होंने मुझे जन्म दिया इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पत्नी का अपमान करने का, उसे तकलीफ देने का, सबके सामने उसे जलील करने का हक मिल गया उन्हें। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकता, और इसके लिए आज उन्हें जवाब देना, उनकी गलती दिखाना ज़रूरी था। इसलिए आप इस बारे में सोचकर परेशान मत होइए, आपको अब से बस हमारे बच्चे के बारे में सोचना है, खुश रहना है। चलिए अब कुछ देर लेट जाइए। प्यार से उसकी हथेली को अपने लबों से चूमते हुए अक्षय ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। शाम तक अहाना की फैमिली सहगल निवास से विदा ले चुकी थी, पर वे अभी दिल्ली में ही ठहरे थे। दादा दादी यहीं रुके थे। रूपाली जी की बहन भी प्रस्थान कर चुकी थी, और रूपाली जी एक बार जो कमरे में घुसी सो दोबारा बाहर नहीं निकली थी। फलक अपनी बेटी संग आज यहीं रुकी थी, और उसके रहने से अंतरा की काफी हेल्प हो गई थी। अहाना कमरे में सो रही थी और अक्षय कहीं बाहर गया हुआ था। रात का खाना बाकी सबने साथ ही खाया था, बस रूपाली जी का खाना उनके कमरे में पहुंचाया गया था, और अहाना और अक्षय ने भी साथ में कमरे में ही खाना खाया था। अक्षय खाली बर्तन नीचे रखकर वापस कमरे में आया, साथ में अहाना के लिए दूध भी लेकर आया। उसने उसकी दवाइयां खिलाई, फिर उसके पास बैठ गया। अहाना थोड़ी तिरछा हुई और उसके सीने पर अपना सर रख दिया। सर में हल्के दर्द का एहसास हुआ, पर जब अक्षय की स्नेह भरी हथेली ने उसके बालों को स्पर्श किया तो चेहरे पर सुकून व राहत के भाव उभर आए। दूसरी तरफ आज जो हुआ उसके बाद अन्वय और अंतरा दोनों की खुशी दुगनी हो गई थी। अंतरा इस वक्त बैठ के सिरहाने से टेक लगाए बैठी थी, और अन्वय अपने बेटे को अपनी बाहों में थामे कमरे में टहलते हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले टकुर टकुर कभी अन्वय तो कभी आसपास देख रहा था। अन्वय, अंतरा के पुकारने पर अन्वय उसकी ओर पलट गया। हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं कुछ महीनों के लिए घर चली जाऊं, माँ कह रही थी कि वहां रहूंगी तो अच्छी देखभाल हो जाएगी, मेरी भी और अयान की भी। अंतरा की बात सुनकर अन्वय के चेहरे पर उदासी के भाव उभर आए। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे और आयु के बिना? कुछ महीनों की बात है, आ जाना ना वहां मिलने हमसे, उसके बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। माँ कह रही थी कि अगर अभी मेरी ठीक से देखभाल नहीं हुई तो आगे बहुत परेशानी होगी, मुझे भी कुछ वक्त अपने घर पर बिताना है। वहां मम्मी और भाभी रहेंगी तो अयान को संभालने में भी आसानी रहेगी, और मैं सोच रही थी कि जीजू से कहकर जीजी को भी साथ में ले जाऊं, वहां उनका अच्छे से ख्याल रख लेंगे। जीजी वहीं रख जाएंगी और मैं 2-3 महीने में वापस आ जाऊंगी, तब तक अयान भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मेरी भी हालत ठीक हो जाएगी। अंतरा ने अन्वय को अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उसे उसके पीछे की वजह बताई, जिसने अन्वय को सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ भाई से बात इस बारे में, अभी तो तुम कुछ देर सो जाओ, बाद में आधी रात में ये तुम्हें परेशान करेगा। अंतरा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी और झट से लेट गई। अपने बेटे को संभालते हुए अन्वय सोच में पड़ गया। अंतरा और अहाना का साथ जाना, वो भी तब जब अंतरा के पास अयान है और अहाना प्रेग्नेंट है, थोड़ा मुश्किल लग रहा था। यहाँ परमिशन मिलना तो मुश्किल था ही, पर वहाँ कानपुर में भी दोनों को साथ में संभालना वहाँ के लोगों के लिए चैलेंजिंग होगा।